हमारा जो सत्र है इसमें हमारे पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें विचार सुनने को मिलेंगे। दो वाइस चांसलर्स हैं हमारे बीच में जो कि अपने विचार सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले एक और वाइस चांसलर हैं राई यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने एमओयू, उनके मन में विचार आया कि हम भी एमओयू कर लें ब्रह्मा कुमारीज के साथ, क्योंकि ये जो हमारा वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का कोर्स मटेरियल है ये अनपैरेलल है। इसमें जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी बहुत ही हाई है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की है और बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन इसको मिली है। तो वैसे तो देखिए, जैसे कि आज दोपहर का जो सत्र था, इनॉग्रेशन का सत्र था, उद्घाटन भाषण में हमारे जो वरिष्ठ भ्राता निर्वैर जी हैं उन्होंने ये बताया था कि जो वैल्यूज हैं उसके लिए एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल कौन सेट करेगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैल्यू बेस्ड बने या जिनके साथ हम रह रहे हैं वो वैल्यू बेस्ड बने, तो पहले हमें उन वैल्यूज को अपने अंदर ढाल करके दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टॉलरेंस है, सहनशीलता है। अब सहनशीलता के बारे में महात्मा बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी, तो जिन्होंने नहीं सुनी है उनको मैं सुना देता हूं। कहते हैं महात्मा बुद्ध एक बार बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, कोई व्यक्ति आ गया तो उनको गालियां देने लगा, एक से एक गंदी गाली, और एक आध गाली नहीं दी, गालियों की सुनामी उसने डाल दी उनके ऊपर, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। क्यों विचलित नहीं हुए? उस गाली देने वाले ने उनसे जो है उसको अचंभा हो रहा था कि मैं इतनी गालियां दे रहा हूं और ये व्यक्ति शांत बैठा है, तो उसने कहा अभी तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तो महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा आपको एक बात पूछूं? हाँ पूछ। क्या पूछता है? पूछ क्या पूछेगा? फिर दो चार गालियां साथ में जोड़ दी। महात्मा बुद्ध ने कहा भाई ये एक चीज है, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप नहीं ले रहे तो किसके पास रहेगी? तो वो समझ गया कि ये तो सारी गालियां मेरे पास ही रही हैं, लौटकर मेरे पास ही आई हैं। तो ये सहनशीलता का एक मिसाल है, उसके बाद वो उनका भक्त बन गया। तो सहनशीलता का जो गुण है वो कमजोरी नहीं है। कई बार हमारी भी किसी के साथ अनबन हो जाती है तो हमारे मन में भी संकल्प चलने लगते हैं, अच्छा इसने मुझे दो सुनाई मैं चार सुनाऊंगा, है ना, इसने दो लगाई मैं चार लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अभी हम आज के सत्र की शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारे बीच में सबसे पहले मैं निमंत्रण देता हूं डॉक्टर बीके पांड्यामणि जी को कि वो मंच पर आए, क्योंकि उन्होंने एमओयू साइन करवाना है। फिर इसके बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर कार्तिक जैन जी, प्रोवोस्ट राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात से। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर, प्लीज आइए पधारिए। और इंस्पिरेशन देने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी को। तो मृत्युंजय जी जहां भी हैं कृपया आ जाएं। इसके बाद स्पीच के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बी के सीमा चोपड़ा को, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं एजुकेशन विंग की, लुधियाना से हैं। फिर आज के हमारे वक्ता के तौर पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर एन कविता दरयानी राव जी, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, कृपया आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। प्रोफेसर एन कविता दरयानी राव जी। उसके बाद आज के सत्र के जो चेयरपर्सन है प्रोफेसर पीएन शास्त्री जी, वाइस चांसलर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से। तो सर प्लीज आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। और इसके उपरांत मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर हरीश शुक्ला जी को कि वो भी मंच पर आए। तो मृत्युंजय भ्राता जी, हाँ जी, वो कुछ ही पलों में हमारे बीच में पहुंच जाएंगे। तब तक हमारे बीच में ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी पहुंच चुके हैं, जो कि वाइस चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग ब्रह्मा कुमारी के। अब मैं अनुरोध करता हूं, लेकिन अनुरोध से पहले हम 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, जैसे कि परंपरा है इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की। आप सभी गहरी शांति का अनुभव करेंगे मन में। ओम शांति। अभी मैं अनुरोध करता हूं ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि वो आकर के बैजेस और गुलदस्तों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत करें। स्वागत किया जा रहा, तो इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूं, हमारे बीच में रजिस्ट्रार हैं निवेद, हमारे मृत्युंजय भाई जी जो कि वाइस चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग के, हमारे अतिथियों का सौगात देकर के स्वागत करते हुए, ईश्वरीय सौगात। उनके साथ रविकला बहन जी हैं। रविकला बहन जी भी पहले इंजीनियरिंग में प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, बाद में इन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शुक्रिया भ्राता मृत्युंजय जी और रविकला बहन जी। ये आपका धन्यवाद मृत्युंजय भाई जी। अभी मैं निवेदन करता हूं एमओयू के विषय में बताने के लिए डॉक्टर बी के पांड्यामणि जी को, कृपया आएं और अब एमओयू के बारे में बताएं।
मंचासीन आदरणीय महानुभवों और शिक्षाविदों, आज ये हमारा एक सौभाग्य का दिन है। आज हमारा दूसरा एमओयू साइनिंग हो रहा है, तो राय यूनिवर्सिटी है, अहमदाबाद में है। इट इज ए सेल्फ फाइनेंस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टार्टेड ओनली इन द ईयर 2012, बट हाउएवर दे गॉट अवार्डेड एज द बेस्ट प्राइवेट अपकमिंग यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2013। विद इन ए ईयर ऑफ गैप दे कुड एबल टू अचीव द बेस्ट प्राइवेट अपकमिंग यूनिवर्सिटी एंड दे आर हैविंग डिफरेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज दे आर वाईफी कैंपस लेस ग्रीन कैंपस दे आर ऑफरिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस एक्सेलेंट फैकल्टी विद ब्लेंड ऑफ एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड दे आर गिविंग लाइव प्रोजेक्ट्स केस स्टडी रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट्स and regular industry interaction and superior infrastructure. They are also the professional membership of Association of Indian Universities and they are approved by Bar Council of India for their law courses. They are in different schools like School of Agriculture, School of Engineering and Applied Sciences, Business School, School of Arts, Life Sciences and Commerce, School of Fashion Technology. And they are offering various courses like diplomas, undergraduates and postgraduate courses in through the different faculties. Our revered, the respected Vice Chancellor called Provost Karthik Jain is the youngest Vice Chancellor of India, I think so. Okay, for that we are applauding him for his services. Now we are moving towards the signing of MOU.
ये बहुत ही शुभ घड़ी है एमओयू साइन करने की, जिसमें कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय और प्रोवोस्ट यूनिवर्सिटी के बीच में मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता के पाठ्यक्रम का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर किए जा रहे हैं. संधि हो रही है, संधि पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और इसका अवश्य ही लाभ दूर दूर तक पहुंचेगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के पास जो एजुकेशन बीइंग ने कंटेंट मैटर है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, जैसे कि मैं बता चुका हूं. असल में हम जब अदरवाइज मूल्यों के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं भी कैसे सिखाया जाए, बहुत ही मुश्किल है. तो अगर किसी को ईमानदारी की बात बताएं तो बच्चे को यकीन ही नहीं होगा, वो सोचेगा इस क्या ईमानदारी के साथ इस दुनिया में चला जा सकता है, तो आपके सामने 100 सवाल खड़े कर देगा. लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ने जो कंटेंट बनाया है इस चीज को लेकर के, तो वो बहुत ही लॉजिकल है, तार्किक आधार पर दिल के अंदर तक उतर जाता है कि चाहे सारी दुनिया बेईमान हो जाए लेकिन मुझे ईमानदार रहना है, ऐसी दृढ़ता आ सकती है, ये संभव है और आती है और इसकी मिसालें भी हैं. तो एमओयू साइन करने के बाद भ्राता मृत्युंजय जी और डॉक्टर कार्तिक जैन दो विश्वविद्यालयों के बीच में संधि मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता को लेकर. और अभी मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर कार्तिक जैन जी से कि वो दो शब्द आकर शेयर करें.
ओम शांति. परम आदरणीय दारी जानकी जी, परम आदरणीय बी के निर्मला दीदी, परम आदरणीय राजयोगी बी के निर्वैर जी, परम आदरणीय राजयोगी बी के मृत्युंजय जी, परम आदरणीय डॉक्टर बी के पांड्यमणि जी, परम आदरणीय डॉक्टर बी के हरीश शुक्ला जी, चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन प्रोफेसर पी एन शास्त्री, वाइस चांसलर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर एन कविता दरियानी राव, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, and the coordinator of this particular session, Dr. B.K. Seema Chopra, Executive Member, Education Wing from Ludhiana. यह आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज के शुभ दिन जो कि 13 मई 2017 दिनांक है, आज राय यूनिवर्सिटी अहमदाबाद जो कि गुजरात की एक अग्रणी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है का प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एजुकेशन विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ एक एजुकेशनल एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं. आज मैं और मेरा विश्वविद्यालय स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है, अगर आप ध्यान देंगे तो तो वो अंग्रेजों के समय से यानी लगभग आज से 200-250 साल पुराने समय से लॉर्ड मैकाले ने लागू की थी। और इस शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य जो था वो अंग्रेज सरकार के लिए क्लर्क्स को तैयार करने का होता था। हम आज भी उसी शिक्षा पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। अंग्रेज तो अपने उद्देश्य में सफल रहे, परंतु स्वतंत्रता के बाद क्या हम अपना कोई भी उद्देश्य एजुकेशन की फील्ड में स्थापित कर पाए हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। आइए मैं आपको औपनिवेशिक शासन के पूर्व के भारत में ले चलता हूं, जहां पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति का चलन होता था और यह पद्धति संपूर्ण विश्व में उस समय सर्वोपरि मानी जाती थी। दूर दूर से विश्व के कोने कोने से व्यक्ति आकर इस शिक्षा पद्धति में शिक्षा ग्रहण किया करते थे और वापस अपने देश में जाकर भारतवर्ष के गुणों का प्रचार प्रसार किया करते थे। अब आप सोचेंगे कि यह सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह सब बातें बताने का केवल यही है कि जिस एजुकेशनल वैल्यू एजुकेशनल सिस्टम और स्पिरिचुअलिटी जो कभी हमारे देश का एक अभिन्न अंग हुआ करते थे, जिसे आज हम भूल चुके हैं, इसे अब लागू करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। अब यदि हम परम पिता परमात्मा शिवा द्वारा दी जा रही शिक्षा के चार विषय ज्ञान, योग, धारणा एवं सेवा पर विचार करें, तो हम यही पाते हैं कि ज्ञान सत्यता का बोध कराता है, योग ही सच्चा तप है, गुणों की धारणा ही पवित्रता लाती है और निस्वार्थ सेवा ही दान है। यही वह सूत्र है जो हमें वर्तमान में इस वैल्यू एजुकेशन सिस्टम और स्पिरिचुअलिटी का बोध कराती है। मेरा विश्वास है कि इस एमओयू के हस्ताक्षरित होने के पश्चात जो चेंज हम अपने एजुकेशनल करिकुलम और एजुकेशनल सिस्टम में लाएंगे, निश्चय ही वे भारतवर्ष को पुनः उसी शैली में स्थापित करने का प्रयास करेंगे जो कभी भारत का स्वर्ण युग कहलाता था। और अब यही मेरी आप सबके माध्यम से और इस संस्था के माध्यम से एक इच्छा है कि अब पुनः भविष्य में कहलाएगा। मैं पुनः मंच पर आसीन सभी महानुभावों का अत्यंत आभारी हूं कि आपके सानिध्य में मुझे इस निर्मल पावन संस्था के साथ इस एमओयू को हस्ताक्षरित करने का मौका मिला। और मैं आपको आश्वासित करता हूं कि मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद डॉक्टर कार्तिक जैन जी। अब मैं ये भी जरूरी होती है प्रूफ अब मैं भ्राता मृत्युंजय जी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी प्रेरणा के दो शब्द आकर के कहें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी मन में शांति, परिवार में शांति, परिसर में शांति, सारी विश्व में शांति, धरा पर शांति, आसमान में शांति। शांति स्थापन करने की निमित्त बने हुए शिक्षाविदों को मैं प्रणाम करता हूं। आज की इस विशेष मेरे को दोबारा आप सबसे मिलने का मौका मिला। प्रातः सत्र में भी हम लोगों ने एक एमओयू साइन करने के शुभ अवसर मिला। इसके लिए परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता को मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कार्य उनका कार्य है, परंतु हम आत्माएं उनको सहयोग देकर के उनके आदेश अनुसार, उनकी शिक्षा अनुसार, उनकी जो योजना अनुसार, गॉड्स प्लान एंड गॉड्स विजडम के अनुसार ये कार्य करने का मौका मिला। इसके लिए निमित्त बने सबको, विशेष करके डॉक्टर कार्तिक जैन को, उसका नाम ही कार्तिक है, जो वास्तव में बाप दादा ने उनको बहुत प्रेरणा दिया होगा। आज ही इन्होंने इस कार्यक्रम में आए, आज ही अभी कुछ क्षण के अंदर आपको जाना है, कल इनको अनेक कार्यक्रम में भाग लेना। इन्होंने बोला आप आज ही एक MOU कर लेंगे, हम अपने यूनिवर्सिटी में आपकी आध्यात्मिक शिक्षा को, मूल्य शिक्षा को, अन्य पाठ्यक्रम जो भी आप लोग थॉट लेबोरेटरी आदि है आदि हम लागू करेंगे आज ही से। मैंने भी हाँ कर दिया, हमारे भाई लोगों ने जल्दी तैयारी कर दिया, डॉक्टर पांडेमणि, हरी शुक्ला गुप्ता जी आदि आदि। मैं आपको कितने भाग्यशाली समझता हूँ, मुझे अभी इस समय में और इस समय में उपस्थित हमारा डॉक्टर सीमा चोपड़ा जी सब कुछ समय के अंतराल में आपसे शेयर करेंगे, प्रोफेसर एन कविता राव जी भी उपस्थित है, वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चरल फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, आपको मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और प्रोफेसर पीएन शास्त्री जी वाइस चांसलर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली भी से भी उपस्थित है, और हमारे डॉक्टर हरदीप जी है, और आप सबको भी मैं पुनः इस सत्र में स्वागत। मेरे को एक बात याद आ रहा था, डॉक्टर हरि गौतम वेन दी देन दी चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यहीं एक सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा वी हैव ए नेशनल यूनिवर्सिटी, रीजनल यूनिवर्सिटी व स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, बट इट इज एन यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को संबोधित करते इट इज ए गॉडली यूनिवर्सिटी, इट इज ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, इट इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन द यूनिवर्स। ये बात डॉक्टर हरि गौतम जो चेयरमैन ऑफ द UGC का थे तब उन्होंने ये बात कहा, मुझे वो बात अभी याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्सिटीज को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक नया विजन, एक नया मिशन को जारी करने के। मुझे और एक बात याद आ रहा है, द फर्स्ट टाइम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एनी वॉज एन एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब पहले बार आए थे, उन्होंने यहाँ की परिसर को देखने के बाद में दादी प्रकाश मणि तत्काल हमारे मुख्य प्रशासक थी उससे भी मिलने के बाद में इन्होंने एक बात कहा था, आई फाउंड ए न्यू विजन, न्यू लाइफ एंड न्यू मिशन हियर हियर हियर। मैंने ये बात इसके लिए कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक नया होप को, नया विजन को, नया मिशन को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखा। उन्होंने अंतिम तक इन्होंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय कई बार आना हुआ, राष्ट्रपति बनने के बाद में 4-5 बार इन्होंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम में उन्होंने विंग्स ऑफ उन्होंने अपनी किताब में भी उल्लेखन किया। मेरा कहने की भाव है आज भी होप खत्म नहीं हुए, यदि होप को होप के बरकरार के रखने के लिए विधि है तो मूल्य शिक्षा है, उस शिक्षा को लागू करने के लिए जो विधि है टीचर्स है, यदि भारत के सभी टीचर्स जागृत हो जाए नया भारत बनने में देरी नहीं लगेगा, क्योंकि शिक्षक ऐसी एक स्थान है उनको केवल ज्ञान ही नहीं देता है, संस्कार भी दे सकता है, दीक्षा भी दे सकता है, और ऐसी विवेक जागृत कर सकते हैं, उसका तीसरा नेत्र खोल सकता है, उनकी सत्यता के संस्कार दे सकता है, पवित्रता के संस्कार दे सकता है, शांति का संस्कार दे सकता है, और इनके जीवन में केवल नौकरी करने के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, एनलाइटनमेंट के लिए, एनरिचमेंट के लिए और एम्पावरमेंट के लिए उनको शिक्षा दे सकते हैं। ऐसी शिक्षा देने की विधि में केवल टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है और लीगल एजुकेशन है, अन्य एजुकेशन के साथ साथ उनको वैल्यू एजुकेशन को एक फाउंडेशन के रूप में, एक शिक्षा के रूप में उन्हें अडॉप्ट करेंगे। मैं समझता हूँ इस भारत को जल्दी से जल्दी दैव भूमि बनेंगे, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर दिस वर्ल्ड, हमारा प्रधानमंत्री जी का भी सोच है भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है, परंतु वो गुरु के स्थान पर कौन पहुंचाएगा, केवल पॉलिटिशियन से नहीं है, उनका एक अंग है, उनका एक रोल है, परंतु इसका रोल में सबसे बड़ा योगदान दे सकते तो टीचर्स दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, इसके लिए आप लोग तैयार होना, आप इसके लिए दृढ़ संकल्प करना, ये सबसे बड़ी बात है इसके लिए, क्योंकि एजुकेशन इज द ओनली वे टू एम्पावर द ह्यूमन सोल्स, क्योंकि एजुकेशन को एक नॉलेज के रूप में माना जाता है, बिकॉज नॉलेज इज पावर, परंतु आज की पावर क्या है, मनी पावर, मिलिट्री पावर, मस्कुलर पावर, न्यूक्लियर पावर आदि आदि, परंतु पावर कौन सी सच्ची है, न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस पावर की आवश्यकता है, न्यू एंड क्लियर कॉन्शियस कॉन्शियस को शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इसके लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने एक नया आंदोलन भी शुरू किया कुछ साल से, क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ। आज जितने भी समस्या है संसार में, सबसे समस्या मनुष्य के मस्तिष्क समस्या, उनका सोच समस्या, उनके संस्कार समस्या, उनके संबंध समस्या, उनके हर चीज में मनुष्य सबसे बड़ा आज समस्या बना हुआ। इस समस्या का मूल कारण है उसका सोच है। इसको मन की शुद्धिकरण की आवश्यकता है, संस्कारों को दिव्यीकरण की आवश्यकता है, स्वभाव को दिव्य स्वरूप को अनुकरण करने के लिए आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता को किस विधि से चेंज करेंगे उसके लिए मूल शिक्षा चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, योग शिक्षा चाहिए। इस योग के माध्यम द्वारा मन को स्वच्छ कर सकते हैं। दूसरा जो समस्या सारी संसार में, हर चीज अब पॉल्यूट हो चुकी है। वाटर पॉल्यूट है, एयर पॉल्यूट है, सॉइल पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, हर प्रकार के पॉल्यूशन, मदर ऑफ ऑल पॉल्यूशन इज द मेंटल पॉल्यूशन। इस मेंटल पॉल्यूशन को ठीक करेंगे तो सारी प्रकृति के पंच तत्व अपने आप शुद्धिकरण होगा और हमारा जितने भी बॉर्डर आदि आदि बना वो भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए इस पॉल्यूशन को भी ठीक करने के लिए ईश्वरी विश्वविद्यालय के हर साल हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 10 पौधा लगाने के, इस साल हमने एक योजना बनाया क्योंकि इस साल ईश्वरी विश्वविद्यालय का 80 साल का वार्षिक उत्सव कुछ ही समय पहले मार्च में हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी इसको उद्घाटन किया। हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने एक संकल्प किया 80 लाख पौधा लगा करके धरती को हरा भरा बनाने के कार्य में एक कदम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप सभी सहयोग दे सकते हैं, आप सभी योगदान दे सकते हैं, आप सभी दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। कहीं भी हो, किधर भी हो, चाहे यूनिवर्सिटी कैंपस हो, स्कूल कैंपस हो, चाहे घर की कैंपस हो, चाहे खेती का क्यों ना हो, वहां भी जाकर के हम लोग हरा भरा करने के कार्य करेंगे। मैं समझता हूँ हमारा जो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, अनेक प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम को सोल्यूशन है। कोई ऑक्सीजन को खरीद नहीं कर सकता है, मार्केटिंग नहीं कर सकता है, कर भी जाएंगे तो उसमें भी शोषण शुरू हो जाएगा। इसके लिए ऐसी एक विशेष हम योगदान देने के लिए संकल्पबद्ध है हमारा। इसमें एमओयू किट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन है, पार्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन है, पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन है। इस पार्ट ऑफ एजुकेशन के साथ साथ हम जुड़ करके काम करेंगे। ऐसे कार्य करने वाले हर एक आत्मा को, हर एक प्रोफेसर को, हर एक टीचर को, हर एक विद्वानों को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते।
ये थे हमारे मृत्युंजय भाई। इनकी एक विशेषता है, कहते हैं ना कोई बहुत बड़ा काम करना होता है तो उसे कहते हैं बीड़ा उठाना। तो हमारे मृत्युंजय भाई जी ने ये बीड़ा उठाया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ताज पहना है कि इस मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता को विश्व के कोने कोने तक लेकर के जाना है। जहां एक और ब्रह्मा कुमारी के जो सेंटर हैं वो दुनिया के 140 देशों तक पहुंचकर ओम शांति की ध्वनि की हुंकार भर रहे हैं मानव मात्र को शांत करने के लिए, वहीं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स के माध्यम से बाल बाल तक, बच्चों बच्चों तक, विद्यार्थी विद्यार्थी तक मूल्यों की शिक्षा पहुंचाने का जो जिम्मेवारी का बहुत बड़ा ताज है वो हमारे मृत्युंजय भाई जी ने पहना है। और इसमें उन्होंने कहा कि मैंने सभी शिक्षकों को पहना दिया है, तो अब आप महसूस करो कि आपने भी ताज पहन लिया। तो अभी मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर बीके सीमा चोपड़ा जी को, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है एजुकेशन विंग लुधियाना से। आप वहां बीएड कॉलेज में पढ़ाते हैं और आपने बहुत से विद्यार्थियों को पीएचडी कराया है, एमफिल कराया है और निरंतर मूल्य शिक्षा कार्यक्रम के साथ भी जुड़े रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सीमा बहन जी,
ओम शांति। इतने धीरे से ओम शांति, अब पता चल रहा है कि एजुकेशनिस्ट बैठे हैं। आज का हमारा टॉपिक टैपिंग पावर ऑफ माइंड, मन की शक्ति का नियंत्रण, मन की शक्ति को दिशा प्रदान करना। इससे पहले कि हम नियंत्रण और दिशा प्रदान करने की बात करें, ये समझना होगा कि मन क्या है। अगर हम लर्निंग के एक होल टू पार्ट मेथड की तरह से चलें कि पहले संपूर्ण को जान लें कि मन किस चीज का हिस्सा है, तो होल को समझने के लिए एक चीज, हम कौन हैं, हम सभी आत्मा हैं। कैसी है ये आत्मा दिखने में? रात को आसमान में चमकते हुए सितारे देखते हैं, आत्मा भी एक चमकता हुआ सितारा है, ज्योत है, दीपक है, दिया है, एक लौ है। गुरबानी में लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ना हम मेल हैं, ना फीमेल हैं, हम सभी ज्योत हैं। कहां पर है यह ज्योत? दिस सोल इज लोकेटेड एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, दोनों भ्रकुटी के मध्य में, जहां पर तिलक लगाया जाता है। पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर तीन चीजें हैं। जैसे यूं कहो, ये बॉडी मोबाइल है और इस मोबाइल के अंदर ये छोटा सा सिम है। सिम इज द एक्रोनिम ऑफ थ्री वर्ड्स, एस स्टैंड्स फॉर संस्कारास, आई इंटेलेक्ट एंड माई, एम इज माइंड। ये तीन चीजें हैं इसके अंदर। ये मन क्या है? इंटरचेंजेबली कहीं शब्द यूज हो जाते, हार्ट एंड माइंड। एक शब्द ब्रेन एंड इंटेलेक्ट। पहले इनको समझना होगा। हार्ट और जो ब्रेन है, ये फिजिकल ऑर्गन्स हैं इस बॉडी के, जिसको कि बायोलैब में जाकर के देखा जा सकता है, ऑपरेशन थिएटर में जाकर के देखा जा सकता है। लेकिन मन और बुद्धि नॉन फिजिकल हैं, मेटाफिजिकल हैं। इन आंखों से ना तो आत्मा को, ना मन को, ना बुद्धि को देखा नहीं जा सकता। आप किसी के भी माइक्रोस्कोप को लगा करके दिन भर बैठे रहे भ्रकुटी के मध्य में, इवन डिजिटल माइक्रोस्कोप को भी लगाकर बैठे रहे, आपको कभी भी ये लाइट नहीं दिखाई देगी। हाँ, इस लाइट को, इस ऑरा को, इस प्रभा मंडल को फील किया जा सकता है। मन क्या है? द माइंड इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान की सीमा से पार है। आप बैठे यहां हैं, इसी समय आप अपने घर के बारे में सोचेंगे, आप सबकी बुद्धि के इस माइंड के स्क्रीन पर आप सबके घर का चित्र आ गया। बैठे यहीं पर ही हैं, कैसे पहुंच गए घर? इस मन और बुद्धि के द्वारा, क्योंकि ये स्थान की सीमा से पार है, ये समय की सीमा से भी पार है। 10 साल पहले कोई घटना घटी थी 2007 में, एक सेकंड में ये मन 2007 में जा सकता है। ये फ्यूचर में भी ट्रेवल कर सकता है। 2027 की घटना कुछ भी आप सोचें कि ऐसा मेरा घर होगा, बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे, ये 2027 में भी अभी इसी क्षण चला जाएगा। और स्पीड कितनी है इसकी? द स्पीड ऑफ द माइंड इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड। अब अंदाजा लगा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाने में हमें कितना टाइम लगेगा और मन को जाने में ऑस्ट्रेलिया कितनी देर लगती है। क्या है मन? हमारे सोचने की शक्ति का नाम है। ये एनर्जी जो हर पल थॉट्स क्रिएट करती है। ये मन बहुत सारे थॉट्स दे देती है। एक मन कहता है मैं ये करूं, एक मन कहता है मैं ये लूं। समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर इन टू माइंड्स। फिर एक जज होता है बुद्धि। मन हमारा प्लानिंग कमेटी है, डिसीजन टेकिंग कमेटी इज बुद्धि। वो उन जो कई सारे विचार मन ने दे दिए उनका निर्णय करती है। बुद्धि के अंदर डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी होती है, बुद्धि के अंदर रीजनिंग एबिलिटी होती है, लॉजिक की एबिलिटी होती है, एनालाइज करने की, सिंथेसाइज करने की, इवैल्यूएट करने की। ये सब बुद्धि की शक्तियां हैं जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। और एक बार ये डिसीजन टेकिंग कमेटी अंदर डिसीजन ले लेती है तो तीसरा डिपार्टमेंट ये कर्म के रूप में परिवर्तित फिर बाहर दिखाई देगा, एक्सप्रेस होगा आइदर थ्रू वर्ड्स और एक्शंस। और जो कुछ भी हम बोल देंगे, कर्म करेंगे, उसकी छाप अंदर पड़ जाएगी। विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारा मन एक सागर की तरह है जिसमें कि लहरें उठती रहती हैं। इसको हम यूं इस तरीके से कहें अगर कि कोई पॉन्ड है, उसके बीच में कोई कंकड़ डालेंगे, रिपल्स आएंगी, किनारे को छू करके वापस वहीं लौट करके आएंगी। हमारा मन जो बहुत सारे विचार करता है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, वो बड़े बड़े पत्थर के समान हैं। इमीडिएट उसकी क्रिया बहुत फास्ट चलता है हमारा मन उस समय। लेकिन जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे मन के सोचने की स्पीड है वो कम होती चली जाती है। तो मन को समझने के लिए क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, जिसकी कि अभी भाई जी बात कर रहे थे, एक मिनट में 25 से 30 तक विचार, माना हर 2 सेकंड के बाद नया विचार, ये नॉर्मल माइंड की बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा मन सोचने लगा तो वो अवस्था टेंशन की होती है, उससे और ज्यादा सोचने लगा स्ट्रेस की स्टेज, उससे और ज्यादा सोचने लगा डिप्रेशन। इसलिए गुरबानी में लिखा हुआ है, सोचियां सोच न होवी जे सोचे लखबार। आगे चल करके आता है किव सचियारा होइए। फिर हम कैसे सियाने हो सकते हैं, हमारा आचार व्यवहार कैसे अच्छा हो सकता है। किव सचियारा होइए कि कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म इज वट एवर इज हैपनिंग वी एक्सेप्ट दैट। हुक्म इज टोटल एक्सेप्टेंस। कब हमारे मन की शक्ति बेकार जाती है, जब हम किसी भी सीन के लिए ज्ञान सरोवर जाएंगे, वहां बहनों ने बताया ऐसे होता है ऐसे होता है, एक पूरा एक सीन यहां क्रिएट कर लिया इस छोटे से टेलीविजन के पर, मान लो उससे थोड़ा सा अलग मिलता है यहां पर सीन, किंतु परंतु क्या कैसे ये, उसमें बहुत सी माइंड की एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। लेट द सीन हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली। बेटे के लिए सोच लिया ऐसे ऐसे करेगा बड़ा होकर के, लेकिन नहीं कर रहा, बहुत सी मन की शक्ति बह जाती है। इसलिए लिखा हुआ हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इट्स अ रिटोरिक क्वेश्चन, उन्होंने हमारे से आंसर नहीं मांगा है। सो क्वांटिटी के साथ साथ सेकंड चीज हमें अपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। जो भाई जी कह रहे थे, अगर आज से हम चाहते हैं कि हमारी मन की शक्ति पर नियंत्रण हो जाए, उसको एक दिशा प्रदान कर सकें, आज के बाद नो नेगेटिव थॉट्स मींस नो ब्लेमिंग एटीट्यूड, नो क्रिटिसिज्म, नो कंप्लेंट्स, नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म हो सकेगा? इन सब से अगर हम बियॉन्ड चले जाते हैं, हम अगर एजुकेशनिस्ट, अगर मैं क्रिटिसिज्म को, क्रिटिक होना और चीज है, क्रिटिसाइज करना और चीज है। क्लास में हमारे कोई स्टूडेंट है, रोज लेट आ रहा है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, उसके टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, अगर हम एज ए क्रिटिक उस बच्चे के साथ बात करते हैं, हमारा फोकस सिर्फ हैंडराइटिंग पर होगा जब हम बात करेंगे, उसकी सिर्फ टेस्ट परफॉर्मेंस पर होगा। लेकिन अगर हम उस बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं, तो है ही ऐसा, तो डल है, हम उसकी पर्सनल लाइफ में चले गए और कभी भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकते। इससे बियॉन्ड जाना होगा, वेस्ट थॉट से बियॉन्ड जाना होगा। वेस्ट थॉट्स को एक एनालॉजी के द्वारा, मान लीजिए हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, इवनिंग, लेट इवनिंग का समय है, फुल बीम पर लाइट ऑन की हुई है, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, जाकर के हमने अपनी गाड़ी को तो बंद कर दिया लेकिन लाइट को बंद नहीं किया। अगली सुबह क्या होगा जब हम गाड़ी ड्राइव करने लगेंगे? गाड़ी ड्राइव स्टार्ट नहीं होगी, पूरी रात में उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ऐसे ही हमारी शरीर रूपी गाड़ी बेड पर भी लेटी हुई है लेकिन लगातार ये मन सोच रहा है, फालतू विचारों में पास्ट में चले गए, फ्यूचर में चले गए, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। यकीन करना, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपको अपने बच्चे से कहना पड़ेगा, जरा एक कप चाय का बना करके लाके देना, उठा नहीं जा रहा, बैटरी ड्रेन आउट हो गई, डिस्चार्ज हो गई। जबकि गाड़ी, आपकी शरीर रूपी गाड़ी बेड पर ही लेटी हुई थी, चल नहीं रही थी, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे थे। यह है वेस्ट थॉट्स का प्रभाव। और जब हम अननेसेसरी सोचते हैं, वो हमारे थॉट्स अनप्रोडक्टिव होते हैं। ट्यूबलाइट की उदाहरण लीजिए, जिसके ऊपर बहुत से कपड़े चढ़ा दिए जाएं, जलती हुई ट्यूबलाइट की भी लाइट नजर नहीं आएगी, लेकिन एक एक करके उसकी लेयर को उतार देंगे तो वो लाइट नजर आएगी। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इस लाइट के भी पास 3 मेटाफिजिकल लाइट के और घेरे हैं। इसके बियॉन्ड चले गए तब हम पूरे अच्छे तरीके से अपनी शक्ति को टैप कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। वो 3 घेरे कौन से हैं? मन का घेरा, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होता मेरा मन, बुद्धि का घेरा, मेरी बुद्धि, तीसरा संस्कार, कर्म का घेरा, जिसके लिए शब्द इस्तेमाल होता मेरी नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। इन 3 घेरों से भी पार चले जाएंगे तब वो क्रिस्टलाइज्ड लाइट, रियल सेल्फ, उसको अनुभव कर सकेंगे। जब इनसे हम डिटैच हो सकेंगे, इससे डिटैच होने का एक ही तरीका है, अपने रोल से डिटैच हो जाएं। देखिए, जब हम परम धाम में हैं, अपने असली घर में हैं, आत्माओं का घर, वहां केवल टिमटिमाते सितारे, एक्टर हैं सब। लेकिन एक्टर अपने घर में ही बैठा रहे, उसको कोई एक्टर नहीं कहता। और एक एक्टर को 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक उसको कॉस्ट्यूम चाहिए, लिबास चाहिए, और एक उसको सेट चाहिए। ये पूरी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, सेट है, और ये जो बॉडी हमारी मिली है, ये हमारा लिबास है। बहुत बार चेंज करते हैं, और जब हम ये लिबास में आते हैं, हर उसमें हमारा एक रोल है। एक एक पर्सन के पास, चाहे वो फादर का रोल अदा कर रहा, यूनिवर्सिटी में है तो वो वाइस चांसलर का रोल अदा कर रहा, अपने भाई के पास है तो ब्रदर का रोल अदा कर रहा। अगर हमें हर पल ये स्मृति रहे कि ये केवल मात्र मेरा रोल है, और इस रोल का ये रूटीन है, और इस रोल की मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये मेरे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन मैं आत्मा हूं। इनसे जब हम डिटैच कर लेंगे दैट दे विल रियलाइज दैट माइंड इज द बिगेस्ट रिसोर्स। इसकी इस एनर्जी को टैप करना है और टैप करने के लिए इसको दिशा प्रदान करने के लिए एक ही चीज चाहिए, मेडिटेशन। डेफोडिल्स की आपने पोइम पढ़ी होगी, वर्ड्सवर्थ की, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड एंड आई सॉ 10,000 डेफोडिल्स एट अ ग्लांस नेवर एंडिंग इन लाइन टॉसिंग देयर हेड्स दिस साइड एंड दैट साइड लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल comparing it with the galaxy clinic, comparing it with the waves. And in the last stanza, whenever I am in pensive mood, jab udaas hota hoon, unhi 10,000 phoolon ka scene apne is chote se screen par emerge karta hoon. And I feel the eternal bliss. ये हैं दो प्रकार के लोग दुनिया में। एक है जो यहां पर सीन आ गया उसी के अकॉर्डिंगली अपना दिन बताते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो जैसे उस टीवी का चैनल चेंज कर लेते हैं, वो इस तरीके से इस माइंड की स्क्रीन का भी चैनल चेंज कर लेते हैं। दो मिनट के लिए सभी पीठ को सीधा करके बैठेंगे, जो कुछ भी हाथ में है साइड पर रख देंगे। कुछ क्षण के लिए अपने ही श्वासों पर केंद्रित करें। देखिए मन की आंख से इस श्वास को, श्वास आ रही, श्वास जा रही। जैसे ही श्वास भीतर प्रवेश कर रही, महसूस करें पॉजिटिविटी भी अंदर जा रही, सुख शांति आनंद भी भीतर प्रवेश कर रहा, श्वास बाहर आ रहा, नेगेटिविटी भी बाहर आ रही। केवल श्वास पर ध्यान। कुछ क्षण के लिए स्वयं को एक बगीचे में बैठा हुआ देखिए। बहुत सुंदर बगीचा, बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल, इस समय आप अकेले हैं, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जिंदगी के कुछ पल स्वयं के साथ बिता रहे, मधुर संगीत सुनाई दे रहा, फूलों की भीनी भीनी खुशबू, पूरा वातावरण महक रहा। इस सुगंधित वातावरण को महसूस कीजिए। ठंडी हवा के झोंके चेहरे को स्पर्श कर रहे, पूरे शरीर को स्पर्श कर रहे। पक्षियों की चहचहाट, फल के रस की कुछ बूंदे जीभा पर महसूस करें। वातावरण की शांति को महसूस करते चले जाएं। कुछ क्षण के लिए ध्यान मस्तक पर ले जाएं। मस्तक के बीचों बीच चमकता सितारा, यही मैं आत्मा हूं। आत्मा और शरीर दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। मन की आंख से बहुत क्लियर देखें मस्तक के बीचों बीच चमकते सितारे को। सफेद रंग की किरणें प्रकाश की निकल रही, मस्तक तक, चेहरे तक भर रही, गला, कंधा, पूरे एक एक अंग में इस प्रकाश को महसूस करते चले जाएं। शरीर के आसपास एक बहुत सुंदर ऑरा, प्रकाश का कार्ब महसूस करें। सिर के पीछे इस प्रभा मंडल को महसूस करते चले जाएं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, कोई भी अपवित्रता भी इस घेरे के अंदर नहीं आ सकती। कुछ क्षण के लिए जितना भी भार है इस शरीर में यहीं पर छोड़ेंगे। मन की आंख से सितारे को ऊपर की ओर जाता हुआ देखें, पांच तत्वों की दुनिया से पार, बादलों से पार, हमें कैसे लोक में पहुंच गए जहां पर सुनहरे लाल रंग का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ, बहुत से सितारे चमक रहे। इन सभी सितारों के मध्य अति सुंदर दिव्य सितारा परम पिता परमात्मा, जो शांति के सागर, प्रेम के सागर हैं, उनको महसूस कीजिए। मुझ आत्मा पर परम पिता परमात्मा से शक्ति की किरणें पड़ रही हैं, पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही हैं। दोनों सितारों से निकलता हुआ प्रकाश अन्य सभी सितारों पर भी पड़ने लगा। जस्ट फील द कनेक्टिविटी विद द अदर सोल्स, विद द अदर स्टार्स। नेटवर्किंग बढ़ने लगेगी। जो भी दिल की बात, मन का बोझ, जो किसी से नहीं कह सके, आज अपने दिल की बात परमपिता परमात्मा से कहें। इस शांति को महसूस करें। धीरे धीरे आत्मा रूपी सितारे को नीचे की ओर आता हुआ देखें मन की आंख से। फिर से इस साकार दुनिया में, इस पांच तत्वों के शरीर में ये ज्योत प्रवेश करती है भरकुटी के मध्य। फिर से ध्यान भरकुटी पर ले जाएं, चमकते सितारे की ओर। महसूस करें, मैं सशक्त हूं, निर्भय हूं, विजयी आत्मा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सीमा जी। आपकी तालियों से महसूस हो रहा है कि आप सबने जो है अपनी आत्मा को ऊपर ले गए और फिर वापस लेकर आए शक्ति भर करके। तो अगर कभी भी आपके माइंड, आपको लगता आपका माइंड ट्रैप्ड हो रहा है, कोई जाल में फंस रहा है, तो इस अभ्यास को कर लीजिएगा तो आप जाल से बाहर आ जाएंगे। आज सुबह जब मुझे पता लगा मुझे सेशन को कोऑर्डिनेट करना है, तो मैं भी सोचने लगा माइंड कैसे कैसे ट्रैप होता है। अब पांडवों का हो गया था, जब जुआ खेलने लग गए थे तो अपनी बीवी द्रौपदी को हार गए, माइंड इतना ट्रैप्ड हो गया कि हर अगला दाव मैं जीत जाऊंगा ये सोच करके कि पैसे वापस मिल जाएंगे, अपनी पत्नी तक को हार दिया और महाभारत हो गया। माइंड ट्रैप होता है। आतंकवादी हैं, उनका माइंड ट्रैप कर लिया जाता है और वो कितने बड़े बड़े ब्लास्ट कर देते हैं, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अभी सूचना मिली है कि आज डॉक्टर कार्तिक जैन जी, उन्होंने अभी जाना है, तो आप सबसे विदा ले रहे हैं। आपका शुक्रिया डॉक्टर जैन, आपने समय निकाला और एमओयू साइन किया। शुभ यात्रा। तो माइंड ट्रैप के कई प्रकार होते हैं। आप साधारण सी बात ले लीजिए, पता लगता है अभी सेल लगी है किसी मॉल में, हमें जरूरत भी नहीं होती, फिर भी माइंड इतना ट्रैप कर जाता है, अच्छा 5000 वाली चीज 2000 में मिलती है, हमें बिना जरूरत के भी हम जाते हैं और 8-10 लेकर आ जाते हैं और वो पड़ी रहती हैं, तो वो होता है माइंड ट्रैप। बहुत सारे अच्छा आप सबने अनुभव किया कि कभी आपका माइंड ट्रैप हुआ है? अगर किसी ने अनुभव किया तो हाथ खड़ा करो। देखो अच्छा, जिन्होंने नहीं किया हाथ खड़ा, उनका कभी माइंड ट्रैप नहीं हुआ तो भाई बधाई, बड़े ताकतवर हो। अभी मैं इनवाइट करता हूं हमारे बीच में, लेकिन इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा उनके बारे में। प्रोफेसर डॉक्टर एन कविता दारयानी राव जी, जो कि वर्तमान समय वाइस चांसलर हैं जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। आप इतनी दूर से अपने इतने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकालकर आए हैं, इसका मतलब आपको मूल्यों की कदर है और आप कंसर्न फील करते हैं इतने सेंसिटिव टॉपिक के साथ, क्योंकि मूल्य है, आध्यात्मिकता है, बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आपने समय निकाला उसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं। और इनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, वाइस चांसलर है तो डेफिनेटली और पहले बहुत सारी पोस्टों पर रहे होंगे, तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते 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 अभी वाइस चांसलर के पद पर पहुंचे हैं। और इसके बीच में जो मुझे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये कि शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कोलेबोरेटिंग विद यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस इन फ्रांस अमंग अदर इंस्टीट्यूशंस। शी हैज बीन द लोकल कोलेबोरेटर फॉर द CIMES प्रोग्राम ऑन इंटरमीडिएट सिटीज स्पॉन्सर्ड बाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड यूनेस्को। शी हैज प्रिपेयर्ड ए टीवी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन इंटीरियर डिजाइन फॉर नेशनल टेलीकास्ट। तो इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि इतनी बड़ी विदुषी जो कि आज वाइस चांसलर के पद पर हैं हमारे बीच में मूल्यों और आध्यात्मिकता के सेमिनार में ये जो माइंड ट्रैप पर बात करेंगी। तो मैं अब निवेदन करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर एन कविता दारयानी राव वाइस चांसलर को कि प्लीज आए।
Respected dignitaries on the dais, Dr. B.K. Pandyamani ji, Rajyogi B.K. Mrityunjaya ji, Dr. B.K. Seema Chopra ji, Professor P.M. Shastri ji. We have heard a very beautiful speech by Dr. Seema Chopra. It's very difficult to add to it because she not only explained so beautifully about the brain and the intellect and the power of the intellect and how to control it, but she also led us through a very beautiful experience in a very short spell of meditation. Sorry, I'm not able to speak comfortably in Hindi. I'll be speaking in English. I hope you're all comfortable with that. I'm very grateful to the organizers of the conference for inviting me here. Because a couple of years back, 3 years back, I attended another conference on value education which was held in Punjab Technical University. And after that I was so much influenced by what I heard and came to know that value education has spread through a lot of states in the country, that I decided that we should add it to our syllabus in our university, and from this academic year the students who are admitted will be having this in their program. And this conference came at a very timely period because I think I have access to so much of resource that I need not really stress as how to go about it. Just now a few minutes back we were hearing that educators want to bring this into their curriculum, But how to go about it, because it is not something that we are qualified to do. And suddenly here I have this huge resource available. Thank you very much for that. Definitely I will be collaborating with the Brahma Kumari Center in Hyderabad. Sister Anjali has been a big resource for us even in the past. She has visited the university and given a speech there. But we hope to have a similar MOU to what we saw very shortly. And so we have heard many times about the power of the mind. We are told that our minds have the power to perform much more than what it actually does now, like a supercomputer it can perform. But we very rarely actually get to tap this potential because we don't know how to do it. And we have heard that inventors, discoverers throughout the ages have used this immense potential in a very positive way to be able to make the discoveries that change the course of mankind. Maybe there are some lesser known people who have also used the potential of the mind to make their lives more self-fulfilling and rewarding. But this power has been called many things. It's been called the subconscious, it has been called the superconscious. And what is interesting is that there are many philosophers who feel that this superconscious, superconscious or subconscious, whatever you may like to call it, is available to every individual, and it is the knowledge of the ages that have gone before us, the knowledge of the great people who have gone before us, is available to every individual at every moment if he can train his mind to access this knowledge. So we have to first understand that the mind has this power, that there is a subconscious mind which stores a lot of information, memories, experiences that we have been through. Only we have to learn how to tap it when it is required. As B.K. Seema Chopra ji was just telling us, that thought is one of the instruments of the, is the instrument of the mind. We have to also understand the power of thought. These thoughts can be very decisive about how we take action. In the Gita we have heard just now in the song that preceded this session, we heard, whatever you think, you become that. If you decide to focus on the negative aspects of your life, something may be worrying you too much, it may be frustrating you too much, but if you think continuously about it, it will end up overwhelming you and overtaking your life. So even though you may have some challenges which are creating some bad situations for you, you should not give them too much of importance. You should try to think positively. So about the power of mind and power of thought, we have also heard in the Bhagavad Gita, whatever you think, you will become that. So many great Swamijis in our country have told us about the potency of our thoughts. Whatever you think, you will so become. If you think negative, you will be drowning in a sea of negativity. So if it's positive, we can achieve our goals better. There's a story over here that I want to tell about the power of thought and mind and belief. There was an experiment done by a Harvard professor. Her name was Professor Ellen Langer. She had gone to 7 different hotels in Boston and she contacted 84 housekeepers, and the housekeepers in 4 of these hotels, she said that whatever you are doing, the work in the hotel over here, the housekeeping work, it's a very good thing for you because it meets the requirements of a healthy lifestyle, and it will help you in keeping your body and mind fit. And to the other people, she did not say anything. After she came back, after 4 weeks, she took some measurements once again, and she found that small part of body fat had reduced in the first case, where the housekeepers had been told that their lifestyle was good and healthy. Their blood pressure had slightly dropped, and they were generally showing better readings than the people who had not been told about their lifestyle. So our mind and thoughts, beliefs, can even control our bodies And that is just a small example of how this happens very frequently, more frequently than we think it can actually happen. So hearing something and believing actually affects the physical body, and it affects a lot of the actions that we take. So then the difference between successful and unsuccessful people could be as simple as this. Successful people think and talk about what they want, and unsuccessful people talk about what they don't want. So it's very important for us to think positively, but it's not enough just to think positively. That's a starting point for us, because we have to let positive energies flow into us to take the further steps forward. You know, there are many self-help programs nowadays where people advise others how to take control of their lives, and they make a lot of issue of this positive thinking. But by itself it is not enough. It is just a preparatory stage for us to take control of our lives and go forward. So this is, there was a small incident which I read about. There was a person who was a humorist. He went to a small town in America, and he was talking about the latest book that he had written. And because he was a humorist, people expected that he would tell a funny story. But he was actually talking about his classmate who had achieved a lot in his young life, but unfortunately died in a very tragic condition. But whatever he was saying on that day, people kept on laughing because they expected that he would say something funny and that they would laugh. So they laughed. So this is the kind of controlling mechanism that happens when you expect, when you believe something. So your mind can actually control a lot of things about you. And this is just to give you an example about how important it is to control your ideas and your mind. So change, one way of achieving the goals that you want to is by changing what you think. It's a good place to start. So thinking and believing are very important to begin with. It's also important to train your mind to start tapping this power, maybe by meditation, maybe by other activities. It's also important to realize that you can do things a little bit at a time. You need not really try to achieve the entire goal at once if it looks very difficult. You can go step by step, and that gives you a confidence. The weaker self in you, which keeps on telling you that you cannot do this because it's out of your reach, will start piping down a little bit when you start achieving even the small goals on the way to the major goal. So there are some few things which I personally have tried and found very useful, which I find many people don't do it. They are very small things compared to all the elevated ideas that we have just been hearing, but I just want to share some experiences. You have to be very clear about what your goal is. You have to decide what you want. Sometimes we are not having a very clear and articulated goal, and then we feel surprised that we are not progressing in our lives. Generally, everybody wants to do well. Everybody wants to improve his life. But what is it exactly that we want? We somehow don't articulate to ourselves. So day after day, we do our routine lives. We carry on meeting our friends, going to movies, routinely working in the workplace. But we are not really moving towards any place that we want to go. So you have to articulate to yourself what your goal is first. If you know what your goal is, then you will start moving towards it and achieve it. It's a good idea to actually write down what your goal is, so that you can read it every day. Take some book which is with you all the time, or take even your phone and keep it on your phone, what you want to achieve, what is your goal, so that you can go on reminding yourself about it and go on moving towards it. Then only you can start using these powers which we are all supposed to have, but we don't use on a regular basis. So these are some of the things that I think that make a difference to us. Break down the goal into little pieces. Try to achieve a little bit of it every day. Keep yourself in momentum so that you can feel that your goal is coming closer to you and that you are going closer to it. I've also found sometimes that great ideas come to you when you're just about to fall asleep or just when you're waking up, and you feel this is such a brilliant idea, I'm not going to forget it. But it's actually coming from your subconscious mind, not your conscious mind. So it's a good idea to grab a pencil or whatever and write it down immediately, because it will not come to you in your conscious as. And those are the game changers. Those are the things that make a lot of difference. So you have to be alert to yourself. You have to be calm. You have to be confident. You have to be clear in what your goal is. So these are things which I think we should, which small things which in the way which we do things will help us to achieve our goals in a better way. Sometimes it also happens that, you know, you have made many attempts to do something, but nothing is working. You're not really able to achieve the progress that you want to achieve. It's a good idea to just let it go. And just forget about it. Go and do some physical activity. Go and rest. Listen to some music. And then come back to it much later when you've put yourself in a different frame of mind. But don't leave it completely. Keep on persevering. Keep on improving the work that you've done. At some time you will get that flash of brilliance that you hope to, that will help to achieve your mind, because it will come from the subconscious mind. So these are some of the things that I find that successful people have been doing. It's important to realize that our mind and body are also connected in a very intricate way. If we want to achieve our goals, we have to keep ourselves physically strong, otherwise the body may not support your ambitions or your ideas or your goals. So you have to look after your body also at the same time. And when you're going, when you're embarking on a long journey, which is taking you a long way, it's important to realize that every step counts. Especially the first step is extremely important. And the next and the next. After all, that long journey consists of a number of steps. The ocean consists of a number of drops. So it's very important to take that first step to put yourself in a positive frame of mind and get yourself closer to your goal. I think that is something which I take a lot of heart from it, and I think it will help people who find it difficult to have lofty goals but don't know how to start moving towards it. And when we are close to achieving our goal, when we achieve our goal, when do we get a real feeling of satisfaction? It's when we feel that not only we have achieved our personal goals, but our personal goals have also contributed to societal goals. We have been instrumental, like many others, in improving society, in contributing towards development. That's when we feel a sense of achievement. Thank you very much for this opportunity.
आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर एन कविता दरयानी राव जी, जो वाइस चांसलर हैदराबाद में आर्किटेक्चर विश्वविद्यालय के. आपने बहुत ही दिल की गहराइयों से अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी ऑब्जर्वेशन को हम सबके साथ शेयर किया. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके पहले कि मैं हमारे आज के जो चेयरपर्सन प्रोफेसर पीएन शास्त्री जी हैं उनको बुलाऊं, ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी को मैं 30 सेकंड में बताना चाहता हूं, क्योंकि माइंड की बात चल रही है. स्टार्ट होता है जैसा हमारा थॉट होता है वैसी फीलिंग आती है, और जैसा फीलिंग होती है वैसा एटीट्यूड बन जाता है, और जैसा एटीट्यूड होता है वैसा हम एक्शन करते हैं, और जो रिपीटेड एक्शन होता है वो हमारी हैबिट बन जाती है. एंड बंडल ऑफ हैबिट इज अवर पर्सनैलिटी. अब पर्सनैलिटी कैसी है? सीड है थॉट, थॉट इज ए सीड. देन हाउ टू चेंज द थॉट, तो इसके पीछे तीन फैक्टर होते हैं टू चेंज द थॉट्स. फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? हमारे चारों ओर के एनवायरमेंट से, मीडिया से. उधर न्यूज आ रही होती है इतने मर गए, इतना ये हो गया, ब्लास्ट हो गया, और उधर हम खाना खा रहे होते हैं और हमारी आंखें खुली होती हैं, पुतलियां हम झपकते नहीं हैं, वो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है. तो सुबह उठते हैं तो नींद लगता है पूरी नहीं हुई है नींद, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अंदर काम कर रही होती है, ब्रेन में, सब कॉन्शियसनेस में चली जाती है. सेकंड फैक्टर है जो हमारे थॉट्स को पैदा करता है, वो है हमारा बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम हमें कहां से मिलता है? सबसे पहले हमारे घर से, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, फिर रिलीजियस प्लेसेस से. तो हमें ये चेक करना है कि जिस बिलीफ सिस्टम को हम जी रहे हैं क्या वो सही है. या कुछ और होना चाहिए? क्या हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है? और तीसरा फैक्टर जिससे हमारे थॉट्स ऑपरेट होते हैं वो है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल अभी आप सभी यहां बैठे हैं ज्ञान सरोवर में, आपको किसी ना किसी ने इनविटेशन दिया होगा और आपने हो सकता अपने और भी बहुत सारे प्रोग्राम कैंसिल किए होंगे या पोस्टपोन किए होंगे, और अगली बार जब आपको इन्विटेशन मिलेगा तो क्या आप खुद को रोक पाएंगे? क्यों? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है, आप भाग कर आएंगे इन्विटेशन मिलेगा, जब तक कोई दूसरी बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो। तो अब मैं जो हमारे आज के चेयरपर्सन हैं इस सत्र के, डॉक्टर पी एन शास्त्री जी, उनके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि आप इंडियन फिलोलॉजिस्ट हैं, जिसको हम भाषा विज्ञानी कहते हैं संस्कृत में, संस्कृत लिटरेचर एंड वेदास। ही इज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑन संस्कृत फिलोलॉजी एंड हर्मेनेटिक्स ऑफ द वेदास। ही वॉज द फाउंडर वाइस चांसलर ऑफ द राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ए डीम्ड यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू संस्कृत स्टडीज। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड एजुकेशन, विच इज नाउ नोन एज श्री पट्टाभि सीता रमैया शास्त्री वेदा मीमांसा अनुसंधान केंद्र। आगे कुछ ये संस्कृत में लिखा है, ये मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम द थर्ड हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पद्म भूषण इन 1982 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड एजुकेशन। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ऑनर्ड इट्स फाउंडर वाइस चांसलर बाय नेमिंग इट्स सेंट्रल लाइब्रेरी एज महामोपाध्याय श्री पट्टाभि सीता। अच्छा, ओके, तो आपका स्वागत है शास्त्री जी, आइए।
ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रेस्पेक्टेड पांडन मणि जी, राजयोगी मृत्युंजय जी, पीके सीमा चोपड़ा जी, कविता प्रोफेसर एन कविता दरियाणी जी और भाई और सभी उपस्थित सज्जन, मैं तो दो तीन हिंदी में कह करके संस्कृत का एक दो अंश को खोट करना चाहता हूं। मैं तो लिखा हूं इंग्लिश में और छोड़ दूंगा, कारण उतना समय नहीं है, 10 मिनट के अंदर ही मेरा आशय तो उपस्थापन रखने का कोशिश करूंगा। एक है, पहले ये कह दिए हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। अभी अभी जब राजयोगिनी चोपड़ा जी बताई मन का अंश, वो मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। ये सही है, आज तक मन का संपूर्ण स्वरूप और स्थान को बता नहीं पाई। द माइंड इज नेचर फंक्शन, माइंड नेचर फंक्शंस एंड लोकेशन इन द बॉडी हैज बीन ए वेक्सिंग प्रॉब्लम फॉर थिंकर्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। आज भी नहीं हुआ है, तभी भी जो चिंतकों ने जितना अंश को कहे हैं वो सभी अंश मन के बारे में सत्य ही है। गीता में तो इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः, वो तो आत्मा के बारे में है। पहला है इंद्रिय के साथ तो मन होगा, कुछ वेदांती लोग कहते हैं मन भी एक इंद्रिय है, कुछ कहते हैं इंद्रिय से अतीत है, ऐसा नहीं है, आंतरिक इंद्रिय है। इसलिए योगी प्रत्यक्ष में आत्मा मनसा मन इंद्रियण इंद्रियमर्थेन। सामान्य ज्ञान होने का रीति है, पहले आत्म को ही ज्ञान होता है, किंतु मन के द्वारा होता है, मनस नहीं है तो। किंतु आप मनस का स्वरूप कैसे है, इसमें आज भी चिंतन चल रहा है। मैं मन कैसा भी हो, जो दीदी ने अभी एक्सप्लेन की है, वो ऐसा ही मन का स्वरूप होगा, इसे कल्पना करके चलेंगे, तभी उसको टैपिंग मनोनिग्रह अथवा मन शक्ति निग्रह, टैपिंग ऑफ पावर ऑफ माइंड, टैपिंग द पावर ऑफ माइंड, दोनों समान है मनोनिग्रह करने के लिए। ये आसान नहीं है, कारण भगवद्गीता में चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं दुग्रहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन को निग्रह करना आसान नहीं है, वायु निग्रह करने जैसे निग्रह करना बहुत असंभव है। अर्जुन जो गुरु शिष्य के संवाद के रूप से अथवा कृष्ण उपदेश से देते पूछता है, तभी तो श्री कृष्ण ने, न केवल श्री कृष्ण जो गुरु होते हैं, मन को टैपिंग, मन को एकाग्रता रूप से रखने का उपाय होते हैं। योग सूत्र में भी कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम, उसमें अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छ आप्तुम धनंजय। यदि मन को निग्रहण करना असाध्य हो जाता है तो अभ्यास से होगा, यही है अभ्यास का अनेक मार्ग, जैसे प्रजापति ब्रह्म कुमारी का संप्रदाय में है अभ्यास कैसा करना है मन निग्रह के लिए, ऐसे बाबा रामदेव का भी एक तरीका है, ऐसे रविशंकर जी, ऐसे सहज योग का रामचंद्र जी, ऐसे 10-15 लोगों का पद्धति से मन का निग्रहण का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रयोग से कैसे करना है वो बताते हैं अभ्यास से। एक अभ्यास है सुलभ अभ्यास, एक ही अंश है, ये कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, ये चित्तम है, कारण योग सूत्र में भी चित्तवृत्ति को, योग चित्तवृत्ति निरोध, सामान्य से चित्तम मन और चित्त के सूक्ष्म भेद भी कहते हैं, किंतु हम एक ही समझेंगे, कारण उसमें बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं चल करके। चित्तवृत्ति चित्तम समाधातुम, मन को अथवा चित्त को आप निग्रहण करना है तो सुलभ उपाय एक है, मामिच्छ आप्तुम धनंजय, मेरे ऊपर ध्यान कर दो, कारण भगवान का स्वरूप अथवा जो देव स्वरूप सभी संप्रदायों में अथवा सभी अनेक विभागों में भी सुंदर रूप से आकर्षक रूप से चित्रित होता है, उसमें जब ध्यान करोगे तभी जैसे पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स हम कहते हैं विचारों में, वो जो पॉजिटिव थॉट्स ही सकारात्मक विचार ही ऐसे सद्भावना से मेरे ऊपर कहने से अर्जुन और कृष्ण में बहुत प्रेम भी था, स्नेह भी था और घनिष्ठ संबंध था, इसलिए कहता है, ऐसे नहीं है, भगवान के ऊपर ध्यान करके आप अभ्यास से मन का निग्रह कर सकते हो, एक साधारण सामान्य लोगों को भी सहज उपाय है। इसके आगे है अभ्यासेपि असमर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, कारण हम ध्यान करने के लिए, अच्छा विचारों को ध्यान करने के लिए एक बार एक जगह पर बैठेंगे, भगवान को ही देखेंगे, किंतु हमारा लक्ष्य अथवा मन और एक जगह पर चल जाता है, वो भी संभव नहीं होता है, ऐसे संदर्भ में क्या करें हम। मत कर्म परमो भव, छोड़ दो मेरा पूजा आदि बाकी वगैरह करना है ना, वो करने लगो, करने लगने से अभ्यास से, भौतिक अभ्यास से भी मन उसमें आकर्षित होता है। केवल शून्य रूप से अथवा ज्ञान रूप से ध्यान रूप से नहीं कर पाएंगे, तो ये भी मदर्थम अपि कर्माणि, हम करते हैं हमारा प्रियजन के लिए काम करने से, उनका हित करने के लिए, मित्रों के लिए काम करने से हमारा मन उसमें लग जाता है। ऐसे ही सोचो, मत कर्म मदर्थम अपि कर्माणि सिद्धिम अवाप्स्यसि, ये अंश है उसमें योग सूत्र अथवा योग वासिष्ठ में अनेक अंश है, मैंने अभी नहीं कहना चाहता हूं। तत्र चित्र नदी नाम उभयतो वाहिनी, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध अवस्था, अवस्था के बारे में भी कहे हैं, और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशाः, इन क्लेशों को हम कैसे पा करके जाना है, ये अंश अनेक अंश इसमें है, किंतु इसमें प्रायोगिक दृष्टि से उपन्यास देने से अच्छा जैसे अनेक संस्थाएं हैं वो साक्षात अभ्यास करके हमको करना पड़ेगा। एक अंश कारण मैं संस्कृत का शिक्षक होने के कारण से सभी संस्थाओं के बारे में भी हम ये कहता हूं, जैसे बाबा रामदेव जी के आश्रम में चलता है तो, अथवा रविशंकर जी के भी जब कोर्स में चलता है और लोगों के, और मूल शिक्षा के बारे में अब जब विचार आए हैं, कोई भी हो, सभी इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटेक्निक हो, सभी में आप जो जोड़ना चाहते हैं उसमें प्राचीन काल से वेद काल से आधुनिक तक जो वाक्य हैं अथवा मूल्य शिक्षण के बारे में जो कथन है, ऐसा मूल संस्कृत वाक्यों का भी जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। उससे क्या होता है, एक ही एक दो शब्द कहते हैं, उदाहरण अग्नि जो फायर है उसके लिए नाम है, अग्नि कहते हैं, वह्नि कहते हैं, हुतवाह कहते हैं, दहन कहते हैं, पावक कहते हैं, अनेक शब्द है, ऐसे एक अर्थ समान होने पर भी पावक पावयति, ओ हुतवाक देवों का जो आहति देते हैं उसको लेने वाला, अग्नि ही वन्नी वाहति, एक एक अर्थ में वो शब्द में भी भिन्न भिन्न अर्थ होता है। ऐसे ही ऐसे हम देखते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध क्लेश के बारे में उसका ये अंश को निरूपण करते हैं, योग सूत्र हो अथवा योग वासिष्ठ का अंश हो अथवा और कोई मूल वेदों का मंत्र हो, उसमें जो अर्थ निकलता है उससे स्वतंत्र रूप से चिंतन करने का शक्ति आ जाता है। इसलिए सभी अभ्यास में और अनेक योजनाओं में मूल संस्कृत का अंतर्भाव भी हो, इससे हमारा जो प्रयत्न में फल अधिक होगा। अतएव मया यद्यदुक्तम् श्रोतुम पंचवाक्यानि संस्कृतेन वच्मि, सामान्यतः संस्कृत भाषायां यदि ब्रूमः तदानीं किमपि कष्टं भवति इति अनुभवामः, तथा नास्ति, सहज रूपेण अधिगन्तुं शक्यते, यतो हि एकं वाक्यमस्ति इन्द्रियाणि पराण्याहु, भगवद्गीतायाः इन्द्रियाणि पराण्याहु, इन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि, उदाहरणं दीयते चेत् हस्तः पादः शिष्यं किमपि दीयतां नासिका, इन्द्रियाणि ज्ञातम्, पराण्याहु इन्द्रियाणि सर्वतः श्रेष्ठानि सन्ति, इन्द्रियेभ्यः परं मनः, यद्यपि मनः एकम् इन्द्रियम् अन्तरिन्द्रियम्, इन्द्रियाणां यथा कार्यं भवति तदपेक्षया मनसः कार्यम् उत्तमं भवति, श्रेष्ठं भवति, गहनं भवति, सामान्यतः मनसस्तु परा बुद्धिः, यथा दीदि बुद्धि के बारे में मनसः निग्रहणार्थं किं करणीयं, बुद्धिः चिन्तनं, बुद्धेः अधीने मनः भवति चेत् तदानीं निग्रहः भवितुमर्हति, एवं साक्षात् संस्कृत भाषया संस्कृत वाक्येन चिन्तयामः तदानीं अस्माकं शक्तिः वर्धते इति आशयः। ये केवल मेरा एक अंश है जो जो मैंने जैसे टैपिंग द पावर ऑफ माइंड कहते समय पर मुझे आसान होता है इसलिए मैं इंग्लिश में लिख दिया था, किंतु से सोचा उतना अंश इस कहने के लिए विवरण करने के लिए संभव नहीं है। और योग के लिए और टैपिंग द माइंड इसके लिए प्रायोगिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अभी छोटा सा जो प्रायोगिक दिखाए हैं ऐसे अंश आवश्यक है। जब तक हम प्रयोग से प्रैक्टिकल रूप से उसको नहीं समझाएंगे तब तक प्रायशः अनुभव नहीं हो सकता है। अभी छोटा सा अनुभव जब दिए थे दीदी ने ऐसा होना है। और ये हमारा वैदिक विचारों ने यही चाहते हैं न केवल मानवों का मानवेतर जीवियों का भी हित करने का एक शांति मंत्र से मैंने समापन करना चाहता हूं। उसका अर्थ सहज है जो आत्मा है जो परमात्मा स्वरूप है वो हमको शांति दे। कारणम ज्ञानात अभ्यासात ज्ञानम ज्ञानात ध्यानम ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांतिरनंतरम जो आप निरूपण करते थे उस समय पर ज्ञान अभ्यास से भी श्रेष्ठ है समझना उससे भी ध्यान उससे भी श्रेष्ठ है। कारण ध्यान करना आसान नहीं है जैसे यम नियम आदि से ध्यान तक चलते हैं ध्यान से भी कर्म फल त्याग जो मन को एकाग्रता करते समय पर जैसे कर्म फलों का परित्याग करने का नेगेटिव अथवा अनावश्यक विचारों का परित्याग करने का रीति कैसे है उसके बाद शांति मिलता है। त्यागात शांति ही अनंतरम इसलिए ऐसे जो प्रायोगिक अंश है विशेषतः जब दीदी लोग आते हैं उनको हसन मुख देख करके उनका जो सेवा भाव देख करके मुझे इतना संतोष होता है। कभी कभी मेरा ऑफिस में आएंगे तो उनको वेट करना भी पड़ता है 5 मिनट दुख हो जाता है कारण मैं नहीं देख पाता हूं। और भाई जैसे नेहा जी शुक्ला जी और वो दिल्ली से आते हैं और वो इतना प्रेम से कारण उनका अप्रोच जो है वो इतना अच्छा होता है और उससे प्रभाव होता है। और एक विशेषता है ब्रह्म कुमारी जो संप्रदाय में जो सिस्टर्स हैं जो दीदी लोग हैं उनका ही सेवा ज्यादा है संभवतः मेरे ख्याल से और भी है नहीं है मैं नहीं कहता हूं किंतु उससे एक बार हो पूछे थे हम ये होते हैं इसलिए दोनों मिलकर के आते हैं कभी कभी आप इस आने के लिए। मैंने उनको देख करके एक बार कहा मैं भी जाता रहता हूं इसका मतलब ये नहीं है मैं संपूर्ण ईश्वरीय विश्वविद्यालय का तत्वों से ही प्रभावित हूं उससे ज्यादा मुझे वैदिक संप्रदाय का प्रभाव ज्यादा पड़ा ही कारण बाल्य में वो पड़ा। उसके बाद जो जो आधुनिक रीति में मैंने गया उसका प्रभाव ऐसे नहीं पड़ा किंतु सभी में अच्छे अंश हैं एक में भी कमी नहीं है किंतु मेरे ऊपर जो वैदिक मंत्रों का और वैदिक संप्रदाय का प्रभाव ज्यादा पड़ा है उसका ही उपयोग ज्यादा करता हूं उसे भी मुझे मेरा ये आधुनिक और विभिन्न संप्रदायों से उनका अभ्यास से उनका परंपरा से कोई हानि नहीं हुआ है और लाभ भी हुआ है। कभी कभी ये जो कहते हैं जो स्त्री शक्ति नहीं कहते हैं हमको भेद नहीं है एक ही रूप है कारण हाँ तभी भी जो शंकराचार्य जी ने आदि शंकराचार्य जी ने वो देवी का स्तोत्र करने पर एक श्लोक कहते हैं चिता भस्मालेप गरलमशनम दिक्पटधर जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेश भजति जगदीशैक पदवीं भवानी तत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम। वो कहने का तरीका ही साहित्यिक है कारण भगवत्पाद शंकराचार्य जी का वो ज्ञान शक्ति अद्भुत है वर्णना शक्ति अद्भुत है। ऐसे ही मैं केवल एक शांति मंत्र से जो संपूर्ण विश्व का हितकामना है वो करके समाप्त करना चाहता हूं। ओम तच्छयोरावृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये दैवी ए स्वस्तिरस्तुन स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे ए शञ्चतुष्पदे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद प्रोफेसर पीएन शास्त्री जी, वाइस चांसलर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। अभी मैं प्रोग्राम का समापन है और जैसे कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रवि कला बहन जी को।
ओम शांति। इतने समय तक वो भी सुबह से आप बैठे हैं, वैसे देखा जाए टीचर्स को खड़े होकर बोलना एक ऑनर है, बैठकर सुनना एक पनिशमेंट है, लेकिन आप सभी ने इस सीमा को, इस हद को पार कर लिया, सफल बन गए, इसलिए मैं पहले आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ भ्राता कार्तिक जैन जी, जो अनिवार्य कारण से अपने सेवा क्षेत्र के लिए गए हैं, निकले हैं, उनका जो जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में विशेष इस वैल्यू एजुकेशन तथा स्पिरिचुअलिटी को अपने बच्चों में, अपने स्टाफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बोल्ड स्टेप लिया है, उनको धन्यवाद भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। मैं फिर धन्यवाद करती हूँ हमारी बहन सीमा चोपड़ा जी का, जो इस संस्था में सिखाई जाती है, जो योग विद्या के बारे में हमें अवगत कराया, अभ्यास भी कराया। कविता दरियानी राव जी ने बहुत ही सुंदर तथा स्पष्ट, सुंदर सरल सभ्य शब्दों में हमारे सामने इस मूल्य शिक्षा की आवश्यकता को रखा। बाकी अंत में हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत ही सुंदर विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, भगवत गीता तथा शंकराचार्य जी के विचारों को सामने रखते हुए। लेकिन सत्य यह है कि गुरु के रूप में कृष्ण खड़े हैं, शिष्य के रूप में अर्जुन है। अर्जुन समस्त मानव कोटि का पूर्ण प्रतिनिधि है, उसके मन में अनेक प्रश्न है, अनेक प्रकार के संशय है, उनको स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी देह जन्य विकृतियां, देह के संबंधित धर्मों से मुक्त हो जा, इन सब से ऊपर उठ जा, आत्म धर्म में तुम स्थित हो जाएगा और मेरे शरण में आ जाएगा तो अवश्य ही तुम्हारे सब विकर्मों का विनाश कर देता हूँ। तो सर्व देह के धर्मों से मुक्त होने के लिए अवश्य ही हमें मन को एकाग्र करना जरूरी है। उसको ही आगे बढ़ाते हुए बहुत सुंदर शब्द उन्होंने कहा, योगस्थः कुरुकर्माणि। तो भिन्न भिन्न प्रकार के योग विधि वहाँ बताए गए हैं, क्योंकि एक टेम्पल है पहाड़ के ऊपर, नॉर्थ से भी है रास्ता, साउथ से भी है, ईस्ट से भी है, वेस्ट से भी है, लेकिन जहाँ मूर्ति है वहाँ जाने के लिए एक ही दरवाजा होता है। वैसे ही यहाँ कर्म योग है, कर्म को प्रामुख्यता देते हुए, ज्ञान योग है, ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते हुए, भक्ति योग है, भक्ति को इम्पोर्टेंस देते हुए, संन्यास योग है, इस बेहद में आने के लिए या हद के सभी आशाएं आकांक्षाएं दूर करने के लिए, ऐसे भिन्न भिन्न मार्ग भिन्न भिन्न संस्कार वालों के लिए बताए गए, लेकिन अंत में गुरु शिष्य को समस्त मानव कोटि के रूप में देखते हुए कहते हैं कि मन मना भव मध्याजी भव, मन मना भव मध्यादि, मतलब अपने में मन को एकाग्र करने के लिए आत्म स्थिति में स्थित हो जाओ और मुझ बाप को याद करो, मुझ परम पिता को याद करो। यह है मन को एकाग्र करने की विधि जो हम यहाँ अभ्यास करते हैं सहज राजयोग में। इसलिए ये नहीं समझना कि हम मन को एकाग्र नहीं कर सकते, क्योंकि भिन्न भिन्न अनुभवियों ने हमारे सामने योग के डेफिनेशंस व्याख्याएं रखी। योगः चित्तवृत्ति निरोधः कहा, पातंजलि महर्षि जी ने, क्योंकि चित्त की वृत्ति ही चंचलता है, उसको निरोध करना, उसको कंट्रोल करना, इसी का नाम योग है। क्योंकि योग शब्द आता ही है संस्कृत के युज धातु से, युज्यते अनेन इति योगः, संबंध जोड़ना, संबंध को निभाना। तो आत्मा स्थिति में स्थित होकर हम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली मन की गति, मन में उत्पन्न होने वाले संकल्पों की तीव्रता सब एक ठिकाने पर लग जाएगा। इससे और आगे बढ़ाते हुए योग वाशिष्ठ में कहते हैं, वशिष्ठ ऋषि राम लक्ष्मण को जब पढ़ाते हैं तब मनः प्रसन्न रूपेण, मन को प्रशांत करने की विधि है योग। और उसको आगे बढ़ाते हुए फिर से भगवत गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता लाना ही योग है। कर्म से भिन्न नहीं है जीवन, कर्म में योग हो, कर्म करते हुए पिता परमात्मा को याद करे, मन को अपने वश में रख कर, इसी का नाम योग है। और आगे बढ़ाते हुए इसके सहयोगी अंश को पढ़ाते हैं कि योगः समत्वम उच्यते, क्योंकि जीवन में सुख दुख है, लाभ हानि है, जय पराजय है, मान अपमान है, स्तुति निंदा है, ये दोनों को संतुलित स्थिति में स्वीकार करके सकारात्मक दृष्टिकोण से हम समस्याओं का समाधान ढूंढते जीवन में सफलता प्राप्त करने की विधि ही है योग। और ही सिंप्लीफाई करें, योगः स्वदर्शनाय, न तो परदर्शनाय न तो प्रदर्शनाय। परदर्शन के लिए भी योग नहीं है, प्रदर्शन के लिए भी योग नहीं है, ये है ही हमारी आंतरिक यात्रा। इसीलिए कहा जाता है योगा इज एन इनर जर्नी, योगा इज एन अपर जर्नी, योगा इज एन आउटर जर्नी। तो और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शंकराचार्य जी का उल्लेख दिया, उनके एक कृति भजगोविंदम में कहते हैं कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम, जो व्यक्ति सत्य के संग में रहेगा वो व्यक्ति निस्संगी हो जाएगा। यहाँ के जो भी देह जन्य विकृतियां है, देह से अट्रैक्शन अटैचमेंट से उससे अपने आप को छुड़ाता जाएगा। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब निर्मोही हो जाएगा साधक तब ऑटोमेटिकली निश्चल तत्वम स्टेबिलिटी आती जाती है, इसी का नाम है साइलेंस। इसलिए कहा जाता है स्टेबिलिटी इज साइलेंस, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज साइलेंस। मन में विचार आएंगे उनको स्टेबल करना, उनके संख्या को कम करना, उनकी गति को कंट्रोल करना, इसी का नाम है योग। निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति है। जब हम स्टेबल हो जाएंगे, हमारे विचारों को स्टेबल करेंगे, ऑटोमेटिकली जीवन में रहते हुए भी सर्व बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो हम आप सभी से नम्र निवेदन करते हैं कि जीवन से मुक्त होना अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना नहीं, जीवन में रहते हुए भी हम देह के बंधनों से अपने आप को मुक्त कराते, पिता परमात्मा की याद में शक्तियों को भरते, सफलता प्राप्त करने का नाम ही है योगी जीवन। इस योगी जीवन के लिए हम आप सभी को पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति दे, सफलता दे, हर प्रकार से आप सभी को आगे बढ़ाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। आपका भी धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी रवि कला बहन जी।